एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
दुनिया के कोने कोने में कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम। इस दिल में हालेलुया।
इतना
कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम भारत में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम भारत में हालेलुया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज का मेरा शीर्षक है फसह के पर्व में। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मन हृदयों को खोल दे, मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो कि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे इच्छा के अनुसार चलने सके। पिता हमें बुद्धि और ज्ञान दे और हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला, विशेषकर मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा के अनुसार बतला सकूं, जिससे तेरा महिमा हो और बहुत से लोग इससे आशीषित हो। पिता इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। मेरा आज का संवाद का शीर्षक है फसह के पर्व में जाना। यहूदी प्रथा के अनुसार 12 वर्ष की आयु बचपन और जवानी के बीच की सीमा रेखा मानी जाती थी। इस आयु को पूरा कर लेने वाले बालक को आज्ञा अनुसार पुत्र का दर्जा प्राप्त हो जाता था तथा उससे परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता था। उसे धार्मिक विधियों में भाग लेने के लिए, धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर दिया जाता था और उससे यह आशा की जाती थी कि वह पवित्र त्योहारों को माने तथा उसमें भाग भी ले। इसी विधि के अनुसार यीशु अपने किशोरावस्था में फसह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम गया। दूसरे इसराइली भक्तों के समान यूसुफ और मरियम भी प्रत्येक वर्ष इस फसह पर्व को मनाने यरूशलेम जाते थे और जब रीति के अनुसार यीशु की आयु हो गई तो उसे भी अपने साथ यरूशलेम ले गए। वर्ष में 3 त्योहार फसह पर्व, पेंतिकुस्त और झोपड़ियों का पर्व ऐसे होते थे जिनमें इसराइल के सभी पुरुषों को यरूशलेम जाकर इसमें भाग लेने और परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश था। इसमें भी फसह पर्व को मानने के लिए सबसे अधिक लोग भाग लेते थे। इब्रानी जाति के जन्म दिवस के रूप में फसह पर्व का मानना आरंभ हुआ था। मिस्र में वह उनकी अंतिम रात, जब उनकी सोच में भी नहीं था कि वे स्वतंत्र हो जाएंगे, परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि तुरंत निकलने की तैयारी करें। उसने फिरौन को चेतावनी दे दिया था कि मिस्रियों पर अंतिम न्याय भेजेगा और इब्रानियों से कहा कि अपने अपने परिवारों को घर के भीतर एकत्रित कर लो, वध किए हुए मेमने के लहू को द्वारों पर छिड़कने के बाद उन्हें उसे भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ खाना भी था। परमेश्वर ने कहा था उसके खाने की विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। इसे हम निर्गमन 12 का 11 में पाते हैं। यह निर्देश यहाँ पर मिलता है। ठीक आधी रात को मिस्रियों के सभी पहलौठे बंद कर दिए गए थे। तब राजा ने इसराइलियों को संदेश भेजा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। निर्गमन 12:31। इब्रानी लोग एक स्वतंत्र जाति के रूप में वहां से बाहर निकले। परमेश्वर ने आदेश दिया कि यह फसह पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाए और ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा, जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी इस आश्चर्यजनक छुटकारे की स्मृति को दोहराते रहना था। फसह पर्व के बाद 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। इस पर्व के दूसरे दिन उस वर्ष की फसह का पहला पुला यहोवा के सामने चढ़ाया जाता था। ये सारी विधियां मसीह के कार्यों की प्रतीक थी। मिस्र से इसराइलियों के छुटकारे वाला प्रतीक उद्धार से था, जो फसह पर्व के रूप में स्मृति स्वरूप मनाया जाता था। बध किया हुआ मेमना, अखमीरी रोटी, पहले फल का पुला, ये सभी उद्धारकर्ता को प्रकट करते हैं। मसीह के दिनों में इस विधि के पालन करने में एक प्रकार से दिखावा मात्र रह गया था, परंतु परमेश्वर के पुत्र की दृष्टि में इसका महत्व कुछ और ही था। पहली बार बालक यीशु ने मंदिर को देखा था। उसने देखा कि श्वेत वस्त्रों में याजक उस पवित्र सेवकाई के कार्य को प्रतिपादित कर रहे हैं। बलिदान की वेदी पर लहू बहते हुए बलि को देखा। उपासना करने वालों के साथ उसने भी प्रार्थना में सिर झुकाया, जबकि धूपदान का धुआं परमेश्वर के सामने उठ रहा था। छुटकारे के इस विधि को देखकर वह अति प्रभावित हुआ। दिन प्रतिदिन उसके अर्थ को सफाई के साथ देखता रहा। ऐसा लगता था कि प्रत्येक क्रिया उसी के जीवन से संबंधित है। उसके भीतर नई प्रतिक्रिया जागती रही। खामोशी से एक बहुत बड़े प्रश्न को अपने मन में उतारता रहा। उसके मिशन का रहस्य उद्धारकर्ता पर खुल रहा था। इस विधि को देखने में इतना लीन हो गया कि अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया। वह अकेला रहना चाहा। बलिदान की सेवकाई का कार्यक्रम संपन्न हो गया, फिर भी वह मंदिर के आंगन में रुका रहा। और जब उपासक लोग यरूशलेम से अपने अपने घरों को चले गए तो वह बालक पीछे छूट गया। यरूशलेम की इस यात्रा में उसके माता पिता चाहते थे कि उसका परिचय इज़राइल के महान शिक्षकों से कराएं। यद्यपि वह परमेश्वर के वचन की प्रत्येक बातों का आज्ञाकारी था, परंतु रबियों की रीतियों को उसने पसंद नहीं किया। यूसुफ और मरियम को आशा थी कि विद्वान रबियों की संगति में वह उन विधियों को समझने तथा उनकी मांगों पर बुद्धिमत्तापूर्ण से विचार करेगा, परंतु मंदिर में यीशु परमेश्वर द्वारा सिखाया गया और जो कुछ सिखा था उसे वहीं पर कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। भविष्यवक्ताओं के स्कूल के समान उन दिनों मंदिर का एक भाग पवित्र स्कूल के रूप में अर्पित था। यहाँ पर रबी लोग अपने विद्यार्थियों के साथ एकत्रित हुए। बालक यीशु भी यहाँ पर आया, इन महान विद्वानों के चरणों के पास बैठकर उनके उपदेशों को सुनने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने उन महान शिक्षकों से उन भविष्यवाणियों के विषय में पूछा जो मसीह के आगमन का संकेत करती थी। यहाँ पर मसीह अपने आप को एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान का प्यासा हो। उसके प्रश्न उन गहरे सत्यों से संबंधित थे जिन्हें बहुत पहले से हटा दिया गया था, परंतु फिर भी वे आत्मा के उद्धार के लिए मूल्यवान थे। यद्यपि यह प्रकट हो गया था कि उन बुद्धिमानों के विचार जितने तंग और बनावटी हैं, उसके प्रत्येक प्रश्न ईश्वरीय शिक्षा और सत्य को एक नए रूप में प्रकट कर रहे थे। मसीह के आने पर इज़राइल में जो आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होंगी, रबी लोग उनकी बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रहे थे, परंतु यीशु ने यशायाह की भविष्यवाणी को उनके सामने रखा और उनसे पूछा कि परमेश्वर के मेमने के दुख उठाने और उसके मरने के संकेत के विषय में धर्मशास्त्र क्या बताता है। उन विद्वानों ने उलटकर उसी से प्रश्न किए और उसके सार गर्भित उत्तर को सुनकर चकित रह गए। किशोर अवस्था की शालीनता और विनम्रता पूर्वक उसके धर्मशास्त्र के उन वचनों को दोहराया और उनके उन गहरे अर्थों को बताया जिसे वे बुद्धिमान लोग कभी सोचे भी नहीं थे। उसने कहा कि यदि सच्चाई की बातों पर ध्यान दिया गया होता तो धर्म में बहुत बड़ा बदलाव आ गया होता। आत्मिक बातों में बड़ी गहराई के साथ जागृति आ गई होती और जब यीशु अपनी इस जगत की सेवकाई आरंभ करता तो बहुत से लोग उसे ग्रहण करने के लिए तैयार मिलते। रबी लोग जानते थे कि यीशु की शिक्षा उनके स्कूल में नहीं हुई है, फिर भी भविष्यवाणियों का ज्ञान उसे इन लोगों से अधिक है। इस धीर गंभीर विचारवान गलीली बालक में उन्होंने एक अच्छा होनहार भविष्य देखा। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वह उनका विद्यार्थी बन जाए ताकि आगे चलकर वह इज़राइल में एक विद्वान शिक्षक बन सके। वे उसके शिक्षा के खर्च को भी उठाने के लिए तैयार थे ताकि उसके कोमल मन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सके। उसी समय मरियम और यूसुफ बड़े परेशान और दुखी थे। यरूशलेम से चलते समय मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया था और उन्हें यह पता नहीं था कि वह वहीं पीछे रुक गया है। उस समय देश की जनसंख्या बहुत अधिक थी और गलीलों का समूह बहुत बड़ा था। जिस समय वे नगर को छोड़ रहे थे वहां पर बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मार्ग में यात्रा करने की खुशी और मित्रों से मिलाप ने उनके ध्यान को उसकी ओर से बेखबर कर दिया और जब तक रात ना हुई तब तक उन्हें ध्यान ही ना आया कि यीशु उनके साथ नहीं है। और जब वे लोग रात के विश्राम के लिए रुके तब पता चला कि उनके हाथ में बालक का हाथ नहीं है। उन्होंने मान रखा था कि वह उन्हीं लोगों के साथ आ रहा होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बालक जैसा कि वह था उन्होंने बिल्कुल भरोसा कर लिया था कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी वह सहायता के लिए आ जाएगा, क्योंकि उनकी आवश्यकता के अनुसार वह सदा ही ऐसा करता था। परंतु अब वे घबरा उठे। उन्होंने अपने पूरे समूह में उसे ढूंढा परंतु सब व्यर्थ रहा। यह सोचकर वे कांप उठे कि किस प्रकार से हेरोदेस शिशु अवस्था में उसे मार डालने की योजना बनाया था। भविष्य के अंधेरेपन से उनका मन व्याकुल हो उठा। बड़ी कड़वाहट से वे अपने आप को कोसने लगे। वापस यरूशलेम जाकर अपनी खोज को जारी रखा। दूसरे दिन मंदिर में जब वे दूसरों से मिल रहे थे एक जानी पहचानी आवाज ने उनके ध्यान को अपनी ओर खींचा। वे इसमें कोई गलती नहीं कर सकते, कोई दूसरी आवाज उसके जैसी हो ही नहीं सकती थी। यद्यपि बहुत गंभीर तथा उत्सुकता भरी थी परंतु अत्यंत मधुर थी। रबियों के विद्यालय में इन्होंने यीशु को पाया। यद्यपि बहुत प्रसन्न हुए परंतु अपनी परेशानी और दुख को नहीं भुला सके। जब फिर से वह उनके साथ था माँ ने डांटते हुए कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? ऐसा लगा कि वे उसकी बातों को नहीं समझे। तब उसने ऊपर की ओर संकेत किया। उसके चेहरे की चमक को देखकर वे चकित रह गए। ईश्वरीयता मनुष्यता में होकर चमक रही थी। मंदिर में उसे पाकर उन्होंने सुना कि रबी और उसके बीच क्या वार्तालाप हो रहा था। और उसके प्रश्न और उत्तर को सुनकर अचंभा करने लगे। उसकी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता था। उसके प्रश्न उनके लिए एक सबक थे। क्या तुम नहीं जानते, उसने कहा, कि मैं अपने पिता का काम करूं? यीशु अपने उस काम में लग गया था जिसे करने के लिए वह आया था, परंतु मरियम और यूसुफ अपने काम में लापरवाही कर गए। परमेश्वर ने उनके हाथों में अपने पुत्र को सौंप कर उन्हें सम्मानित किया था। पवित्र स्वर्गदूतों ने यूसुफ की अगुवाई की कि वह यीशु के जीवन की रक्षा करे, परंतु पूरे एक दिन उन्होंने उसे अपनी आंखों से ओझल रखा, जबकि उसे क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहिए था। और जब उनकी परेशानी दूर हो गई, तब भी उन्होंने अपने आप का निरीक्षण नहीं किया, बल्कि सारा दोष उसी पर मर दिया। यूसुफ और मरियम के लिए यह स्वाभाविक था कि यीशु को अपने स्वयं के बच्चे की दृष्टि से देखे। वह प्रतिदिन उनके साथ रहता था। उसका जीवन भी लगभग सभी दूसरे बच्चों जैसा ही था। यह बहुत ही कठिन था कि वे अनुभव करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। अपनी माँ को उत्तर देते समय यीशु ने पहली बार यह दिखाया कि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझता है। यीशु ने धरती वाले अपने माता पिता के संबंध को कभी अनदेखा नहीं किया। यरूशलेम से उनके साथ घर वापस आया और उनके कठिन परिश्रम में उनका सहभागी बना। मरियम और यूसुफ प्रार्थना और ध्यान द्वारा अपने मन को परमेश्वर पर स्थिर कर लिए होते तो वे अपने विश्वास की पवित्रता को अनुभव कर लेते और यीशु को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिए होते। एक दिन की लापरवाही से मुक्तिदाता को वे खो दिए, परंतु उसको ढूंढने में उन्हें 3 दिन लग गए। ऐसा ही हमारे साथ भी है। व्यर्थ की बातों द्वारा, बुरा कहने और सुनने द्वारा या प्रार्थना में लापरवाही करने के द्वारा हम भी एक दिन में उद्धारकर्ता की उपस्थिति को खो सकते हैं और फिर से उसे ढूंढने में कदाचित बहुत दिनों तक कष्ट और दुख उठाना पड़े, तब कहीं जाकर उस शांति को फिर से प्राप्त कर सकें। हमें एक दूसरे की संगति में रहते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यीशु को भूल ना जाए और बाद में पता चले कि हमारी असावधानी के कारण वह हमारे साथ नहीं है। जब हम सांसारिक बातों में गले तक डूब जाते हैं और उसके लिए समय नहीं रहता जिसमें हमारे अनंत जीवन की आशा केंद्रित है, तो हम अपने आप को यीशु और स्वर्गदूतों से अलग कर लेते हैं, जहां पर उद्धारकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं समझी जाती और उसकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं की जाती, वहां पर स्वर्गीय शक्तियां नहीं ठहरती। यही कारण है कि बहुत से मसीह के नामधारी अनुयायियों में सामान्यतः उत्साहहीनता व उदासीनता पाई जाती है। बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर अधिक सुख और शांति की ताजगी अनुभव करते हैं, परंतु प्रार्थना, ध्यान, चिंतन, मनन और चौकसी में लापरवाह हो जाने के कारण आशीष को खो देते हैं और अपने आप को पहले से भी अधिक निराशित अनुभव करने लगते हैं। इसलिए प्यारों भाइयों और बहनों, हमें यह ख्याल रखना है कि हमें यीशु को हमारे सामने हमेशा रखना है, उसे नहीं भूलना है। हमें अपने जीवन में यीशु को अपने केंद्रित में रखना है और अगर हम उसकी उपस्थिति को अलग करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत उदासीनता होती है, हम घबरा जाते हैं, हम बहुत चिंतित होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम यीशु को अपने साथ रखें, कि हम यीशु को अपने सामने रखें, हम उसे अपना केंद्रित में रखें। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम यीशु पर अपना ध्यान लगाए और अपना जीवन उसमें केंद्रित रखे, वो हमारे संग रहे कि हम उसके आशीष पा सके। उसे हमें अपने उपस्थिति में रखना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस घड़ी फिर से। तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरा उपस्थिति के लिए, तेरे बेटा प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वह हमारे साथ जीवन बिताने आया था और तू चाहता है कि वह हमेशा हमारे संग रहे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने दे, वह हमारे जीवन का केंद्र रहे, ताकि हमारा जीवन उदासीनता से दूर रहकर हमारा जीवन तुझ में प्रसन्नता से भरे रहे और हम आशा से भरे रहें और हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमें मदद कर पिता, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनक ग्रहण कर, आमीन।
दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।